नमस्कार भारत, 5 अक्टूबर शनिवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 60 की मौत। आज मोदी से मिलेंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना।
बांग्लादेश हैज अ ट्रेड इंबैलेंस विद इंडिया, वी आर एक्सपोर्टिंग लेस इंपोर्टिंग मोर।
और विवेचना में याद करेंगे मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर को।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। इराक में अधिकारियों ने बताया है कि 4 दिन से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कम 60 लोगों की मौत हुई है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बगदाद में एक जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलीबारी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो देश में बेरोजगारी और बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हांगकांग में पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को चेहरे पर मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद कल हांगकांग में और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। 4 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में पहली बार हांगकांग का पूरा मेट्रो सिस्टम बंद हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई मेट्रो स्टेशनों पर हमला किया और उनमें आग लगा दी। इसके साथ ही चीनी बैंकों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमले किए। विधान परिषद के सदस्य और लोकतंत्र के पक्षधर लो किन ही ने बीबीसी से कहा कि मास्क पर प्रतिबंध लगाने से लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है।
We actually think the face mask banning, the anti-mask law is actually not helping the situation at all. And when the government
हमें असल में लगता है कि मास्क को प्रतिबंधित करने से हालात में सुधार की जगह वो और ज़्यादा खराब हो गए हैं। जब से इसकी घोषणा हुई है, हम देख रहे हैं कि जगह जगह और अधिक प्रदर्शन हो रहे हैं। हांगकांग का पूरा रेलवे सिस्टम ठप हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये थे हांगकांग में विधान परिषद के सदस्य लो किन ही के शब्द। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले नाइजीरियाई लोगों के एक समूह ने अपने देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी से कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में वो पीड़ितों की तरह महसूस करते हैं। मोहम्मद बुहारी इन दिनों दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हैं। टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में नाइजीरियाई लोगों के समूह ने उन पर हुए हमलों का मामला उठाया। दक्षिण अफ्रीका में नाइजीरिया सिटीजन एसोसिएशन के उप सचिव डॉक्टर एस जे उबा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में लोग उनके साथ किसी अपराधी की तरह पेश आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विदेशी प्रवासियों पर लगातार हमले बढ़े हैं, खासकर नाइजीरिया के नागरिकों पर। उन्हें यहाँ के लोग अपराधी समझते हैं। इसमें यहाँ की पुलिस और प्रवासन अधिकारी भी शामिल हैं। ये थे दक्षिण अफ्रीका में नाइजीरियाई सिटीजन एसोसिएशन के उप सचिव डॉक्टर एस जे उबा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में 3 कांग्रेस कमेटियों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने से जुड़ी जांच का कानूनी आदेश व्हाइट हाउस में पेश कर दिया है। ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यूक्रेन से कुछ जानकारियां साझा की थीं। हालांकि ट्रंप इन आरोपों से इंकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि जो बाइडन और उनके बेटे ने यूक्रेन और चीन में अपने राजनीतिक और व्यावसायिक फायदे के लिए भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने यूक्रेन और चीन पर इस मामले की जांच करने की अपील भी की है। पुर्तगाल में कल होने वाले आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। ओपिनियन पोल्स में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां गिनाई हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि और पर्यटन में विदेशी निवेश को शामिल किया गया है। हालांकि उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने सार्वजनिक सेक्टर में निवेश को कम कर दिया है। कोलंबिया की सेना ने कहा है कि उन्होंने लेफ्ट विंग के 2 लोगों को मार दिया है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि डेविड और फ्रेंको फार्क के सदस्य थे, जो देश में शांति की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2 किशोरों को भी बचाया है, जिन्हें चरमपंथियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। कोलंबिया में शांति और सुलह के मामलों के लिए बने एक विभाग ने बताया है कि उनके देश में फार्क की 24 यूनिटें हैं, जिसमें करीब 1800 चरमपंथी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत, मैं हूं कुलदीप मिश्र। इराक में बीते चार दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं और अब खबर आई है कि इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर मौतें कल हुई हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इराक में बेरोजगारी, खराब जनसेवाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से।
इराक की राजधानी बगदाद में बीते चार दिनों से ये आवाज़ें आम हो चुकी हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी और उन्हें रोकने के लिए कभी आंसू गैस तो कभी गोलीबारी का इस्तेमाल करते सुरक्षाकर्मी। इन विरोध प्रदर्शनों में अभी तक कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों का यह आंकड़ा शुक्रवार को सबसे ज़्यादा बढ़ गया। हर दिन गुजरने के साथ ये विरोध प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो देश में बढ़ती बेरोजगारी, खराब सार्वजनिक सेवाओं और बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से गुस्से में हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उनसे झूठे वायदे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब्दुल महदी अपने वादों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रात में ही सड़कों को ब्लॉक कर दिया था। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, जो भ्रष्टाचार को खत्म करे और हमारा ध्यान रखे। ये थे कुछ प्रदर्शनकारियों के शब्द। वहीं इराक के प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी ने अपने प्रशासन का बचाव किया है और कहा है कि वो गरीब परिवारों की मदद करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल जादू की छड़ी से नहीं निकाला जा सकता। इस बीच इराक के एक वरिष्ठ शिया मौलवी आयतुल्ला अली अल सिस्तानी ने इन विरोध प्रदर्शनों पर दुख जताया है। उनके प्रवक्ता अहमद अल सैफी ने कहा कि सरकार जनता की मांगों को पूरा करने में नाकामयाब रही है। प्रशासन को समझना चाहिए कि बदलाव एक बेहद जरूरी चीज है। अगर जनता बदलाव चाहती है तो सरकार को इसे सुनना होगा। ये थे एक शिया मौलवी के प्रवक्ता के शब्द। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी इराक में खराब होते हालात पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार से इस पर नियंत्रण रखने की अपील की है। इसके साथ ही मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सुरक्षा बलों से अपील की है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ शांति से निपटें।
ब्यौरा सुना रहे थे नवीन नेगी।
बीबीसी इंडिया बोल।
महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता गोडसे अमर रहे का नारा। रीवा में महात्मा गांधी की अस्थियां चोरी होती हैं और गांधी के लिए लिखा जाता है गद्दार। गोडसे को देशभक्त बताने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद बन जाती हैं। गांधी की 150वीं जयंती पर उनके हत्यारे का गुणगान क्यों? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 5 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। शेख हसीना 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। दोनों देशों के बीच 10 से 12 समझौतों पर हस्ताक्षर होने के आसार भी जताए गए हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच 100 से ज़्यादा समझौते हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में अक्सर ऐसी राय दिखती है कि भारत कई अहम मौक़ों पर उसके साथ खड़ा नहीं दिखता। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हैं और वहीं से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
प्रधानमंत्री शेख हसीना के गुरुवार को भारत रवानगी के ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश में मुख्य चर्चा रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर थी। विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमिन से मीडिया के प्रश्नों में दिल्ली से जुड़े सवाल भी आए, लेकिन बाद में
आरेकटी म्यांमार स्वीकार करेछे जे तादेर फर्मटा ते जथेष्ट भूल आछे।
म्यांमार ने स्वीकार किया है कि उनके फॉर्म में बहुत गलतियां हैं। वो लोग नया फॉर्म बनाएंगे और हर किसी को नेशनल कार्ड दिया जाएगा।
रोहिंग्या शरणार्थियों की देश वापसी का रास्ता विदेश मंत्री के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार के बीच न्यूयॉर्क में चीन की मध्यस्थता से हुई बातचीत के बाद खुला। पिछले दो सालों से लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ झेल रहे बांग्लादेश में आम राय यह है कि भारत ने इस मामले में सिर्फ राजनीति की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इम्तियाज अहमद ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हैं।
We are pretty frustrated with Delhi, and I think the policy makers.
हम दिल्ली से बेहद निराश हैं। मुझे लगता है कि या तो नीति निर्धारकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखे में रखा है, या हो सकता है कि ये उनका ही आइडिया हो कि वो बांग्लादेश के मुकाबले म्यांमार से दोस्ती कायम कर लेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हो किस तरह से म्यांमार चीन से दूर होकर भारत के करीब आ जाएगा।
इम्तियाज अहमद कहते हैं कि ये याद रखना चाहिए कि चीन तब भी म्यांमार के साथ खड़ा था जब पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए थे, इसलिए ये दूर की कौड़ी है कि म्यांमार भारत को चीन पर तरजीह देगा। 4000 किलोमीटर से अधिक लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल उत्तर पूर्व भारत के कई उग्रवादी समूह दूसरे पार जाकर अपनी गतिविधि जारी रखने को करते थे। बॉर्डर पार आवाजाही को मगर 2008 में आई शेख हसीना हुकूमत ने पूरी तरह रोक दिया है। बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह भी उत्तर पूर्व में व्यापार के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार तौफीक इमरोज के मुताबिक तीस्ता नदी पानी बंटवारे जैसे रुके मामले शेख हसीना के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।
आई थिंक बांग्लादेशीज आर अपसेट अबाउट इट, इट्स बीन ऑन द एजेंडा फॉर द लास्ट 10 इयर्स और सो।
बांग्लादेशी इस वजह से बेहद नाराज हैं। ये मामला पिछले तकरीबन 10 सालों से जहां का तहां है। कहा गया कि पश्चिम बंगाल की सरकार इसका विरोध कर रही है। बांग्लादेशियों में इस बात को लेकर निराशा है।
अर्थशास्त्री फहमीदा खातून दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को भी तनाव का बड़ा कारण बताती हैं, जो उनके मुताबिक पिछले साल तक $7 बिलियन सालाना पहुंच गया था।
बांग्लादेश एंड इंडियाज ट्रेड रिलेशनशिप इज अगेन बांग्लादेश हैज ट्रेड इंबैलेंस।
बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार के मामले में भी बांग्लादेश घाटे में है। बांग्लादेश का भारत में निर्यात कम है और आयात अधिक। आप देखेंगे कि भारत जो बहुत सारा माल दूसरी जगहों से खरीद रहा है उसका उत्पादन बांग्लादेश भी करता है, और भारत चाहे तो वो माल बांग्लादेश भी उसको सप्लाई कर सकता है।
बॉर्डर के किनारे के इलाकों में एक चिंता जो आजकल बहुत अधिक है वो है असम में हुए एनआरसी में नागरिकता रजिस्टर से बाहर रह गए लोगों को बांग्लादेश में धकेल दिए जाने की। हालांकि बांग्लादेशी नेताओं से बातचीत में भारत इसे आंतरिक मामला बताता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कथित घुसपैठियों को बांग्लादेशी बुलाने से इस मामले पर चिंता और चर्चा कम नहीं हो पा रही। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी, ढाका, बांग्लादेश।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच कल आखिरकार सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। 288 सीटों में से बीजेपी 164 पर और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी ये तय हो गया कि अब बीजेपी ही प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद शाहिद ने बात की बीबीसी मराठी सेवा के संवाददाता मयूरेश कोनूर से।
पिछली चुनाव के वक्त की बात करें तो दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी और शिवसेना ने, और तब बीजेपी की 121 सीटें आई थी। बाद में उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट लोगों ने भी उन्होंने सपोर्ट किया था, और शिवसेना की जो है 63 सीटें आई थी। हालांकि इस बार जब उन्होंने तय किया कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे तो सीट शेयरिंग में यही चल रहा था कि किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, और बीजेपी जो अपने हक की सीटें हैं जिन पर उनके एमएलए विधायक पहले से ही चुन के आए वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर हम थोड़ी इतिहास में देखें तो हमेशा शिवसेना ने, जब बाला साहब ठाकरे थे तो हमेशा शिवसेना ने खुद को बड़ा भाई कहा था, यानी शिवसेना को असेंबली के चुनाव में ज्यादा सीटें मिलेगी और बीजेपी को कम, लेकिन बीजेपी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो इसके ऊपर दोनों में बहुत बहस चल रही थी लोकसभा चुनाव के वक्त। इन दोनों में जो बात हुई थी कोलिशन करने से पहले कि 150 से सीटें दोनों कम लेंगे, यानी 50-50% जो है वो सीट लेंगे। हालांकि अब बीजेपी अपने उस वक्त के वादे से मुखर गई थी और उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। बाद में प्रेशर टैक्टिक्स में शिवसेना ने आखिर मान लिया और शिवसेना अब 124 सीटों पर सीटें लड़ने जा रही है।
मयूरेश, ये बताएं कि क्या क्या आपको लगता है कि जो अब तक दबाव की राजनीति करती थी शिवसेना बीजेपी पर, तो अब शिवसेना क्या अब पीछे हट चुकी है इन सब चीजों से?
ऐसा ही मानना पड़ेगा और ऐसा ही देखना चाहिए इसे। बीजेपी की हम देखें तो बीजेपी वैसे 164 लड़ रही है और जो बाकी मित्र पक्ष हैं वो भी बीजेपी के ही चिन्ह पर यानी कमल पर ही टिकट जो है वो लड़ने जा रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा शेयर जो है वो दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने पक्ष में ले लिया है।
ये थे बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोनूर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इसी साल 15 अगस्त को राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में 1% की बढ़ोतरी की थी। यह सब मिलाकर राज्य में 58% आरक्षण लागू था। इसके बाद इसी साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया। इस तरह आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा 82% हो गई थी। लेकिन शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्रन मेनन की पीठ ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है। सरकार के आरक्षण के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में से एक कुणाल शुक्ला ने कहा,
भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आरक्षण की दर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो आरक्षण की दर 82% जा पहुंची थी। और अगर इनमें हम भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, महिला कोटा भी जोड़ दें तो ये लगभग 90% जो है पहुंच जाता था।
हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार इस फैसले का अध्ययन करके अदालत में अपना पक्ष रखेगी।
हम जो 82% किए हैं वो गलत नहीं है, हम सारे तथ्य रखेंगे। पहले ही छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण था और अब जाके वो 69% को उन्होंने स्वीकार किया है। 14% जो ओबीसी का है उसके लिए हम लोगों को आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
लेकिन इस मामले पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देना ही नहीं चाहती।
सरकार की नियत नहीं थी कि लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, क्योंकि जिस दिन वो आरक्षण लागू किए हमने कहा हम स्वागत करते हैं, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। हो सकता है कि उनके बीच के ही लोग स्टे लगाए हो।
अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं।
रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट सुन रहे थे आप। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। नवीन नेगी बताइए।
जी कुलदीप, आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि रिजर्व बैंक ने कल रेपो रेट में जो कटौती की है उसको सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान अखबार मेरे सामने रखा है जिसमें हेड जो शीर्षक है वो ये है कि रेपो रेट घटा कर्ज सस्ता होगा। यानी कि रिजर्व बैंक ने कल 0.25% की कटौती की थी जिसके बाद अब रेपो रेट 5.15% पर आ गया है और ये 9 साल में सबसे कम अब रेपो रेट है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि अब होम लोन, ऑटो लोन ये सस्ते हो जाएंगे। और रेपो रेट बता दें कि वो रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को कर्ज देता है
जी।
इसके साथ ही एक और खबर जो कई अखबारों में है वो ये है कि भीड़ की हिंसा पर पीएम को जो खत लिखा था कई सेलिब्रिटीज़ ने, उनमें से 49 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। ये खबर नवभारत टाइम्स में प्रकाशित है और इन लोगों में जो हैं उसमें कई सारे जाने माने फिल्मकार हैं, कोंकणा सेन हैं, मणिरत्नम हैं, इसके अलावा श्याम बेनेगल हैं, रामचंद्र गुहा इतिहासकार हैं, इन सब कई लोगों के नाम शामिल हैं जो प्रसिद्ध लोग हैं
जी। एक खबर जनसत्ता अखबार में है, वायुसेना प्रमुख का बयान है, शीर्षक है वायुसेना प्रमुख ने माना अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराना थी बड़ी चूक। तो ये 27 फरवरी की वो घटना है, इस बहुचर्चित घटना, और इसमें अब वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया गया था जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है। तो जांच में ये सामने आया है कि हेलीकॉप्टर वायुसेना की अपनी ही मिसाइल की चपेट में आ गया था
जी, और इसके साथ ही एक और खबर चलते चलते बता दें कि देश की पहली निजी रेलगाड़ी जो तेजस एक्सप्रेस जिसका नाम है वो पटरी पर दौड़ने लगी है, और यह है जो ट्रेन है दिल्ली से लखनऊ जाएगी।
चलिए, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत शुक्रिया नवीन नेगी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में बहुत कम कलाकारों को इतना सम्मान मिला है जितना बेगम अख्तर को मिला है। उनकी शास्त्रीय संगीत पर पकड़, उर्दू शायरी की समझ, गज़ब की आवाज़ और ज़बरदस्त गायकी का अब तक कोई सानी नहीं मिलता। बेगम अख्तर की 105वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
जब भी बेगम अख्तर के चाहने वाले उनकी ये गजल सुनते थे वो एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते थे। वहां सिर्फ एक ही चीज माने रखती थी, उनकी हीरे की नाक की लौंग की चमक और उनकी अद्वितीय आवाज। किस्सा यह है कि एक बार उनकी मां मुश्तरी बेगम उन्हें बरेली के पीर अजीज मियां के पास लेकर गईं। पीर ने उनसे अपनी गजलों की किताब खोलने को कहा। उन्होंने जिस पन्ने पर हाथ रखा उस पर बहजाद लखनवी की ये गजल लिखी थी। पीर ने कहा कि अगली रिकॉर्डिंग में इस गजल को सबसे पहले गाना। बेगम अख्तर ने यही किया और पूरे भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बेगम अख्तर ने उर्दू के सभी महान शायरों के साथ साथ उस समय के उभरते हुए शायरों को भी गाया। बेगम अख्तर चेन स्मोकर थी। प्रोफेसर सलीम किदवई उन्हें नजदीक से जानते थे और उनके आखिरी दिनों में उनके बहुत करीब थे।
दिल्ली में इन्होंने हमसे कहा सिगरेट पीते, हमने कहा जी हाँ पीते, मगर आपके सामने नहीं पियेंगे। हमारे वालिद इंटेंशन के मेरे अस्पताल तो देखने आई तो बहुत बड़ा बास्केट फलों की बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड और बीच में चार डिब्बी सिगरेट हमारे लिए, वहाँ उनके साथ रह रहे थे हॉस्पिटल में। तो इस किस्म के बहुत लाइवली इंसान थी।
सिगरेट से जुड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा शांति हीरानंद बताती है। एक बार वो ट्रेन से महाराष्ट्र से गुजर रही थी, रात को अचानक उनकी सिगरेट खत्म हो गई।
रात के 2 बजे कह लेंगे या रिटर्न, वो सिगरेट खत्म हो गया, अब कैसे करें। कैप्टन पिया करते नहीं तो एक छोटे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कह लेंगे देखो है कोई दुकान। हमने कहा यहाँ तो अंधेरा ही, हट बौका कहेंगी, अपने खड़ी हो गई उस जमाने में। और वाकई में अंधेरा था, कुछ था ही नहीं, पर गार्ड खड़ा था पीछे दूर, उसको बुलाया अरे मेरे भैया अरे मेरे, वो दौड़ा दौड़ा उसने सोचा कि कोई परेशानी होगी। कह लेंगे बेटा यहाँ कहीं सिगरेट मिलेगी, उसने कहा कुछ था महाराष्ट्र यहाँ सिगरेट नहीं मिलता। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे जीते रहे हैं, तुम्हारा ये हो तुम्हारा वो हो, वो बेचारा हक्का बक्का ही रह गया। उसकी झंडियाँ दोनों ले ली, उसकी लैंटर्न पकड़ ली और 200 रुपये उसको पकड़ा दिए। अब वो क्या करता, वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया स्टेशन, वहाँ से कहीं पान वान की दुकान होगी, वहाँ से लेके आया सिगरेट। तब उसको इतनी दुआएं दी और तब गाड़ी चली।
ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते।
बेगम अख्तर की एक और शिष्या रीता गांगुली कहती हैं कि वो हमेशा कहा करती थीं कि सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती। एक बार रीता गांगुली और बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गोपाल रेड्डी के निमंत्रण पर नैनीताल के राजभवन गई।
नैनीताल का बहुत खूबसूरत झील है, हम बोले अम्मी चलते हैं, हम तो वो तमाम जगह ले गई
इधर उधर घुमाई, मैंने कहा नाव में नहीं चढ़ेंगे। तो बहरहाल हम जाके बैठे, और बैठे तो जो माछी है उसको समझ में आ गया भाई गवर्नर हाउस से झंडे वाला गाड़ी से कोई बैठे हैं। उसके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था विच नेचुरली ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ। बीच झील में जाके उसने बजाया और वो बज रहा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मैंने उस माझी को कहा अरे क्या करो हिमाकत, बंद करो बंद करो, तुम्हें पता भी है कौन बैठी है। अम्मी अचानक बोले रही क्यों बंद करा रही हो बेटा, वाह 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 क्या आवाज है, क्या नाम है इस लड़के का। मैंने कहा अम्मी ये किशोर कुमार हैं। बोले वाह वाह क्या कहने, क्या ऊपर से तरता तररा, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और क्या गाया इस लड़के ने। बेटा कभी कुछ भी चीज सुनना जाया नहीं जाता है। उसी दिन शाम को नैनीताल क्लब में एक प्रोग्राम था, गवर्नर साहब ने रखा था, एक मैखाना है बस में जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो उसका तर्ज कुछ और था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये मैखाना है बज में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यानी चलिया तू तो चलिया, उसको इस्तेमाल कर लिया और लोग झूमने लगे, उनको क्या पता एक्चुअली रेफरेंस क्या है।
शांति हीरानंद बताती हैं कि एक बार जब वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हो रही थीं, तो उनको स्टेशन छोड़ने आए शकील बदायूनी ने उन्हें एक चिट पकड़ाई।
जैसे स्टेशन से गाड़ी अभी जाने वाली थी बम्बई से, तो शकील साहब भागते भागते आए, बेगम साहब बेगम साहब ये गजल मैंने आपके लिए लिखी है। उन्होंने कहा अच्छा शकील, बैग में रख लिया। अब क्या हुआ कि भूल गई, और उनकी आदत ये थी कि वो जब सफ़र करती थी तो उनको ये रहता था कि सारा डब्बा खाली रहे, कोई और दूसरा ना हो, ताकि वो आराम से सिगरेट पी सकें, लेट सकें बेतकल्लुफी से। सुबह जब हुई और भोपाल आया तो भोपाल में उन्होंने चाय मंगवाई, पी कह लेंगे बिटिया वो गज़ल दी थी उसने। शकील ने जरा देखूँ, निकाला बैग, खोला उसमें से वो पर्चा निकाला और पढ़ा, उसको देखा, उसके बाद कह लेंगे वो बाजा निकालना, छोटा सा बाजा था, कन्वर्टेबल था, नीचे बैठ छोटा सा, उसको निकाला, उस पर उंगलियाँ उन्होंने फिराई और ये ऐ मोहब्बत पैदा हुई।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना
नामी संगीतकार मदन मोहन के लिए भी बेगम अख्तर के मन में बहुत स्नेह था। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें मदन मोहन ने ही हारमोनियम सिखाया था। रीता गांगुली याद करती हैं।
ऊपर अम्मी बैठती थी और उनके पैर के पास मदन मोहन जी बैठते थे और वो गाना सुनाते थे, अपनी कॉम्पोजिशन सुनाते थे, और फिर अम्मी को कहते थे सुनाइए ना कुछ, बेगम साहब कुछ सुनाइए ना।
संग ले चल बाके सवरिया नदिया के उस पार हमें संग ले चल,
ये अम्मी गाती थी एक दादरा, उसी के तज लेके
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। इराक में अधिकारियों ने बताया है कि चार दिन से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। हांगकांग में पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में चेहरे पर मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद कल हांगकांग में और ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अमेरिका में 3 कांग्रेस कमेटियों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने से जुड़ी जांच का कानूनी आदेश व्हाइट हाउस में पेश कर दिया है। पुर्तगाल में कल होने वाले आम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। ओपिनियन पोल्स में प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा की सोशलिस्ट पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे एक बार फिर देवाशीष कुमार। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति और बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।